ओम शांति। बाबा के सभी बच्चे इस मनमोहिनी वन में योग की गहरी अनुभूतियां कर रहे हैं। अंतर्मुक्ता जो हम सबको अंदर ले जाती है, मैं जो हूं जैसा हूं, जब हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, बाह्य रूप से अंदर चले जाते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो उस सुख को अतीन्द्रिय सुख अथवा परमानंद कहा जाता है। भक्ति में ये दोनों शब्द बहुत प्रचलित हैं। गोप और गोपियों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है और जो योगी हैं, तपस्वी हैं, उनका परमानंद गाया हुआ है। सुख के भेंट में कभी दुख आ भी सकता है, लेकिन आनंद की भेंट किसी भी बात से नहीं की जा सकती, परमानंद। और वो आनंद जो योगियों को परमात्म मिलन से प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति जब हम एकांत में अंतर्मुखी बनते हैं, सब बाह्य जगत की बातों को समेट करके अंदर चले जाते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन वो सुंदर अनुभूतियां कराता है। आप सब बाबा के बच्चे, नए हैं या पुराने हैं, ये अतीन्द्रिय सुख संगम युग का गाया हुआ है। हर एक को अगर इस ब्राह्मण जीवन में उसने सुख का अनुभव नहीं कर पाया तो कब करेगा, क्योंकि पूरे कल्प में इंद्रिय सुख का अनुभव तो होता रहा है, खाने पीने से, घूमने से, बातें करने से, कुछ देखने से, कुछ सुनने से, उस सुख का इंद्रिय रस तो आत्मा अनुभव करती रही, लेकिन इंद्रिय से परे अपने आत्मिक स्वरूप का सुख वो तभी प्राप्त होता है जब आत्मा अपने निज स्वधर्म में स्थित रहती है। आत्मा का स्वधर्म शांति, प्रेम, आनंद, सुख, जो निजी उसके गुण हैं, जब हम उन निजी गुणों का अनुभव करते हैं, उस स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे वाइब्रेशन से अनुभव होता है ये शरीर नहीं, एक आत्मा है। यही अभ्यास बाबा वर्तमान समय हम सबको अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि जैसे ये देह भान, देह अभिमान नेचुरल हो गया है, नेचर बन गई है आत्मा की, ऐसे ही आत्म अभिमान, देही अभिमान स्थिति नेचुरल बन जाए। अभ्यास करना होगा। हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने साकार में बहुत अभ्यास किया और जितने बच्चे आए शुरू शुरू में बाबा के यज्ञ में, सबकी डायरियों में बस एक ही लाइन लिखी होती थी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जो परिवार के सदस्य उनकी संबंधों के आधार से याद रहती थी, उनका भी नाम लेकर के, ये जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है। लौकिक संबंधों को भी बाबा ने ट्रांसफर किया लौकिकता में, कोई को भी दैहिक दृष्टि से देखा भी नहीं, और ऐसा अभ्यास बाबा ने कर लिया तो बाबा को भी कोई उस दृष्टि से देख नहीं सकता था, लौकिक दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से। ऐसा नहीं कह सकता ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे पापा जी हैं, दादा जी हैं, नाना जी हैं, कोई लौकिक संबंध नहीं रखा। आत्माएं हैं सब। और इतना पक्का कर लिया जो बाबा को देखने वाला हर बच्चा, हर एक के अंदर से, चाहे बड़े से बड़ा, आयु में बड़ा हो, संबंधों में बड़ा हो, पद पोजीशन में बड़ा हो, लेकिन आत्मा का इतना पाठ पक्का कर लिया जो हर एक के अंदर से निकलता था, मेरा बाबा, मेरा बाबा। शिव बाबा तो थे, लेकिन शिव बाबा को पहचानना सहज नहीं था। शिव बाबा तो निराकार है, वो तो आते हैं और चले जाते हैं। साकार में तो ब्रह्मा बाबा ही सामने है। हर एक ने ब्रह्मा बाबा को देखा और ब्रह्मा बाबा के शरीर को भूल गए, आत्मा का अनुभव कर लिया, लाइट का अनुभव किया। बाबा के मस्तक पर जैसे वो लाइट ऐसे चमकती थी, हमने दादियों को भी देखा, इतना अच्छा अभ्यास जिन्होंने दादी प्रकाशमणि की पालना ली है उन्होंने देखा है, इतना आत्मा का अभ्यास दादी ने किया था जो उनके इस भ्रकुटी में आत्मा जैसे दिखाई देती, चमकती थी। हम सब ये मेहनत करते हैं, यही मेहनत है और कोई मेहनत नहीं है। देह अभिमान को गलाने की मेहनत, जिस देह अभिमान के अंदर हम आत्मा इतना समय से रही हैं, इस इंद्रिय सुख ने, देह अभिमान के सुख ने आत्मा को पतित बनाया, भिखारी बना दिया। आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए, बिल्कुल परम पवित्र आत्मा बन जाए, उसके लिए पहला पाठ बहुत गहरा पक्का करना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, ये कर्म इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं। तो जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं और जब एकांत में बैठते हैं तो अंतर्मुक्ता की गुफा में मैं तपस्वी आत्मा विराजमान हूं। वो अंतर्मुक्ता की गुफा ये भ्रकुटी की गुफा है। गुफा के अंदर लोगों ने बैठ करके तपस्या की, और जब ऐसी तपस्या करते थे प्राचीन काल में, अभी तक भी कलयुग के अंत में भी ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी भारत भूमि पर हुए हैं जिन्होंने ऐसी तपस्या की जो उनके वाइब्रेशंस इतने शक्तिशाली होते थे, जो पशु पक्षी सब शांत हलचल समाप्त हो जाते थे, शेर चीते हिरण सब एक साथ शांति से उनकी कुटिया के आजू बाजू में बैठ जाते थे। लोग उनको अपने आप भोजन पहुंचाने के लिए नीचे से ऊपर पहुंच जाते, उनकी गुफाओं में ढूंढ करके उनको भोजन खिला देते थे। इतनी उनकी योग की शक्ति थी, किसी से मांगना नहीं पड़ता था। अभी भी थोड़े समय के पहले, कई साल हो गए, माउंट आबू में कई गुफाएं हैं और उन गुफाओं में कभी कभी कोई कोई पहुंचते हैं, उनके जो चेले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो जाते हैं। एक बार दादी जी ने हम लोगों को कहा कि जितने गुफाओं में सन्यासी हैं सबको बुलाओ, निमंत्रण दो, बाबा के घर में उनको हम भोजन खिलाएंगे। बड़ी दादी ने कहा आज 20-22 साल, 25 साल हो गए होंगे, तो हम सभी अलग अलग ग्रुप में उन सन्यासियों की गुफाएं जहां जहां पता चली कि हैं तो गए। तो दिलवाड़ा के ऊपर एक पहले ज्ञान गुफा आती है, बहुत नजदीक है वो तो, लेकिन उसके ऊपर और चढ़ते गए पहाड़ पर, एकदम चले गए तो वहां एक गुफा थी, अग्नि गुफा, और उस गुफा में एक ही सन्यासी रहता था अकेले में, एकदम जंगल के बीच में। जब हम वहां उसकी कुटिया में पहुंचे तो ये लोग तो गांजा चर्च वो सब पीते रहते हैं बैठे हुए अंदर अंदर, तपस्या भी करते हैं और अपने मस्ती में रहते हैं। जब हम गए तो आप कैसे आ गए, मतलब पता तो था, होता हुआ लोग उनके फॉलोअर्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी हैं, जानते थे। लेकिन वो जब तपस्या करते थे, बैठ जाता था तो कहते सब जानवर राजू बाजू में आके शांति से बैठ जाते, हलचल समाप्त, कोई भी यहाँ वार नहीं करता। और भगत लोग अपने आप नीचे से आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसन्न होते हैं, कुछ न कुछ खाना पीना पहुंचा देते हैं। ये तपस्या का बल था। अभी तो धीरे धीरे वो नीचे आ गए, गृहस्थी बन गए, सब मना अपने अपने आश्रम बना लिए, लेकिन प्राचीन काल में इसी भारत भूमि पर ऐसे संत ऋषि तपस्वी आत्माएं थी। और वो तपस्या एक स्थूल गुफा में बैठ के करते थे, लेकिन संगम युग पर बाबा ने हम सब बच्चों को बड़ी अच्छी गुफा दे दी। कर्म क्षेत्र पर है, संबंध संपर्क में है, सबके बीच में है, कोई को ये लगेगा ही नहीं कि गुफा में बैठी हुई आत्मा तपस्या कर रही है, लेकिन कोई भी आकर्षण आत्मा को आकर्षित न करे। जब कर्म इंद्रियों की आकर्षण समाप्त होगी, देखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, खाने का रस, कई प्रकार के रस आत्मा को अभी तक खींच रहे हैं, इंद्रिय रस हैं, और जब तक इंद्रिय रस आत्मा को खींच रहे हैं तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, परमात्म सुख, उस मिलन का सुख, उसका अनुभव करने के लिए हम सबको यही एक अभ्यास करना है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास एक नेचुरल बन जाए। क्या सिर्फ आत्मा हूं आत्मा हूं ये रटने से हो जाएगा? आत्मा के जो निजी सातों गुण हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ये नंबर वार मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसी विधि पूर्वक हम उस स्वरूप में स्थित रहते हैं, जब हम ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहते हैं तो आत्मा बहुत एक्यूरेट निर्णय करती, परख लेती है, उसकी निर्णय शक्ति बहुत काम करती है। समय पर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी क्या चाहना है, उसके अंदर परखने की शक्ति बहुत होती है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो ज्ञान सुनना और सुनाना अलग बात है, लेकिन एक ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहना और उस स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना, ज्ञानी आत्मा, ज्ञान किसको कहते हैं? लाइट है, ज्ञान एक लाइट है। और जब ज्ञान की लाइट है जिसके पास, वो कभी धोखा नहीं खाता, वो कभी दुख का अनुभव नहीं करता, उससे कोई गलती नहीं हो सकती। ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है और बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाया। उसको गीता में कहा, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। जो ज्ञान स्वरूप है, जिनके बोलने में, सुनने में, देखने में ज्ञान समाया रहता है, वो एक शब्द भी ज्ञान के सिवाय अपने मुख से नहीं उच्चारण करते। ऐसे शब्द न हो जो दूसरी आत्माओं को कोई अंदर से परेशानी हो, दुख की अनुभूति हो। तो जब हम हर आत्मा को सुख दे रहे हैं, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने बोल से, अपने वाइब्रेशन से, तो आत्माएं जो धुआ देती हैं, उससे जो सुख की अनुभूति होती है, वो अतीन्द्रिय सुख कहलाती है। हम सब इस बात को थोड़ा सा अटेंशन रखें कि अगर मुझ आत्मा को कोई भी मेरे किसी कर्म से, किसी एक्टिविटी से डिस्टर्ब हो करके, ये ठीक नहीं किया इसने, बद्दुआ दे दी, हमारी खुशी गायब हो जाएगी, हमारा सुख खत्म हो जाएगा। जो हम सुख परमात्म प्राप्त कर रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति के आधार से अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके, आत्मा उस गुफा से बाहर आ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना, हमेशा एक बात मैं अटेंशन रखता हूं कि कोई भी आत्मा से, भले हमारे हिसाब किताब हैं, सबके हैं, लेकिन जानबूझ करके या कोई कर्म में आकर के हम ऐसे शब्द, ऐसे कोई व्यवहार में ना आए जो आत्माएं डिस्टर्ब हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो, उनकी खुशी गायब हो जाए। हमारे खुशी देने से हमारी खुशी बढ़ेगी। अगर हम दूसरों को किसी भी प्रकार की परेशानी दे रहे हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी, उस सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते। इसलिए बहुत अटेंशन देना अपने कर्मों पर। सारे दिन की दिनचर्या में कर्म इंद्रियां जो कर्म कर रही हैं, वो कर्म मुझे बंधन में बांध न दे। हम कर्म संबंध के लिए सृष्टि पर हैं अभी, संगम पर, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर जब तक आत्मा है तब तक कर्म के बिना नहीं रह सकती। कर्म तो उसको करना ही है, लेकिन कोई भी कर्म बंधन न बन जाए इस पर बहुत अटेंशन देना, क्योंकि पिछले कर्मों के बंधन को हम काट रहे हैं। उसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ज्ञान की पढ़ाई से, संबंधों से उन कर्म बंधनों की रस्सियों को काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी कारण से अभी नया बंधन क्रिएट न हो, इस पर बहुत ध्यान देना। बंधन कभी भी सुख का अनुभव करने नहीं देता। परतंत्रता हमेशा इंसान को परेशान करती है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस समय मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, और वो मुक्त स्थिति केवल ज्ञानी तू आत्मा ही अनुभव कर सकती है। कर्म क्षेत्र पर है, कर्म कर रहे हैं, कर्म संबंध निभा रहे हैं, लेकिन कोई भी कर्म अपने बंधन में न बांधे। संबंध नहीं रहे इस समय, बंधन बन गए। और बाबा कहता है बच्चे बंधन दुख देते हैं, इसलिए बंधनों से मुक्त बनो। जहां पर भी कोई बंधन हो, संकल्पों का, संस्कारों का, संबंधों का, व्यक्तियों का, पदार्थों का, पहले एकदम एकांत में बैठ करके गुफा में देखो। जब हम योग में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो पता चलता है ये बुद्धि किधर जा रही है, और जिधर जा रही है उसको अगर चेक करोगे तो पता चलेगा यही बंधन है। कोई का नाम रूप अच्छा लगता है, कोई की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, किसी का धन दौलत अच्छा लगता है, किसी के व्यवहार को अच्छा हम समझते हैं, और अच्छाई व्यक्ति को जो प्रभावित कर लेती है, तो वो अच्छाई जिसने मुझे प्रभावित कर लिया वो अपनी तरफ खींचती है और बंधन बनता है। इसलिए बाबा कहता है इस समय कोई भी प्रकार का बंधन न बने, किसी पर प्रभावित नहीं होना। कोई आत्मा बहुत है, विशेष है, बहुत गुणवान है, स्नेही है, सहयोगी है, हमें सही रास्ता दिखा रही है, हमें सहयोग दे रही है, ये भी प्रभु देन है। बाबा ने इसको इस योग्य बनाया है। उसको देख करके बाबा की याद है, वाह बाबा वाह, कैसा आपने बच्चा बनाया, हमें साथ दिया। बाबा के साथ हमारा संबंध जुटा रहे, कोई दैहिक व्यक्ति के आधार से हमारा बंधन न बन जाए। इसलिए ध्यान देना, हम सब बाबा के प्रति हैं, कोई भी इस समय नया बंधन क्रिएट नहीं करना। बंधन सुख का अनुभव करने नहीं देगा। जब सर्व संबंध एक बाबा से हैं, तो कोई भी दैहिक संबंध मुझ आत्मा को अपनी तरफ बांध न ले। चेक करो, लौकिक प्रवृत्ति में रहते हैं, संबंध निभा रहे हैं, लेकिन निभाते हुए बड़ा अच्छा बाबा का एक शब्द आता है, तोड़ निभाओ, पहले तोड़ो फिर निभाओ। मना नहीं है निभाने की, लेकिन पहले बुद्धि से तोड़ दो कि तो सब मरे पड़े हैं, ये तो मेरे हैं ही नहीं। जब बुद्धि से उन संबंधों से कनेक्शन टूटेगा, तब उनके साथ निभा सकोगे, माना उनको संबंध में आकर के बाबा का बना सकते हो, समीप ला सकते हो, नहीं तो वो बंधन बंधन के रूप में अपनी तरफ आत्माओं को खींच रहा है। और बंधन है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतर्मुखी बन करके, अंदर जा करके पहले बहुत सूक्ष्म बंधनों को चेक करो। कोई के प्रभाव में आत्मा तो नहीं है, किसी के दबाव में तो नहीं है, किसी के साथ टकराव में तो नहीं है। अगर टकराव भी किसी के साथ है तो भी उस सुख का अनुभव नहीं कर सकते हम। तो टकराव वाली आत्मा भी अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। इस समय हम सबको एक बहुत बैलेंस रखना है, कोई भी आत्मा से स्पेशल स्नेह नहीं और किसी से भी स्पेशल दुश्मनी नहीं। बहुत हैं अच्छे, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सबके साथ समान रूप में व्यवहार करते हुए हर आत्मा की विशेषता जरूर देखो। विशेषता देख करके उसके विशेषता का वर्णन करो, विशेषताओं को सामने लाओ, विशेषताएं ग्रहण करो। उसकी बाबा मना नहीं करते, लेकिन विशेषता के पीछे प्रभावित हो जाना, ये बाबा कहते बंधन बनाना है। और ये बंधन आपको उस अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए जो आत्माएं हैं सब बहुत श्रेष्ठ हैं, महान हैं, संगम युग पर भगवान के चुने हुए रतन हैं। हर आत्मा बहुत योग्य और विशेष है, जिस पर भगवान की डायरेक्ट नजर पड़ी है, लेकिन मेरा उसके साथ कोई पर्सनल संबंध न बन जाए, बंधन का रूप न ले ले। इतना ध्यान देंगे तो आप बहुत न्यारे और प्यारे की स्थिति में रह सकते हैं। एक बैलेंस जो है ब्राह्मण जीवन में, बैलेंस बहुत जरूरी है। हर चीज का बैलेंस चाहिए, कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं है, अति में हमेशा नुकसान होता है। इसलिए बैलेंस से चलो, अति आप परमार्थ और व्यवहार दो शब्द आते हैं। अगर परमार्थ माना बाबा के अर्थ या परमात्मा के अर्थ हमने बहुत सा समय लगा दिया, जवाबदारियां व्यवहार की हैं, नहीं है तो ठीक है, हम समर्पित हो गए, लेकिन जवाबदारियां हैं और हमने परमार्थ में अपना समय लगा दिया, अपनी जवाबदारियों को निभाया नहीं, क्या उसका योग लगेगा? बाबा कई बार कहते हैं जो तुमने रचना रची है पहले उसकी पालना करो। ऐसे नहीं कहते छोड़ दो, किनारा करके आ जाओ, बैलेंस से चलो, उसकी पालना करते हुए, उसको संभालते हुए आप अपना समय और शक्ति बाबा के कार्य में लगाओ। बैलेंस है तो सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, और जहां बैलेंस से ब्लेसिंग्स हैं वहां पर हमारी जीवन बहुत ब्लिसफुल आनंदमय बन जाती है। उस आनंदमय जीवन के लिए चाहे न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है। बैलेंस समझ रहे हो, संतुलन, समानता, अगर इसको बैलेंस से चलाएंगे, जैसे कोई बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत लवली परिवार में हैं, मधुर हैं, सरल हैं, नम्रचित हैं, मिलनसार हैं, लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। मुझे दादी जानकी का एक बड़ा प्यारा शब्द याद रहता है, दादी कहती थी मैं तो किसी में नहीं फंसती हूं, लेकिन मेरे में कोई ना फंस जाए, इसका ध्यान देती हूं। आप सब ध्यान देना, क्या क्या टेंशन रखती है, कहीं मेरे में ये न फंस जाए और मेरे कारण मुझे याद करते रहे, दुखी होते रहे, परेशान होते रहे। इसलिए किसी से विशेष लेन देन में भी दिया, पालना दी, लेकिन न्यारी हो गई, उसके पीछे नहीं लगी। ये बैलेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो कई आत्माएं मुझे अगर आधार बना लेंगी और मैं आधार हिल गया तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए बहुत ध्यान देना, कोई का भी आधार नहीं बनना, किसी में फंसना भी नहीं है और किसी को अपने में फंसने भी नहीं देना है। प्यार दो, पालना दो, स्नेह दो, सहयोग दो, लेकिन ऐसे नहीं मेरे ऊपर वो आधारित हो जाए, मेरे बिना रह ही नहीं सकता, मेरे बिना चल ही नहीं सकता। कई लोग एक बंधन बना लेते हैं। अभी अभी हम जब ग्राम विकास की मीटिंग कर रहे थे, भाई आप क्यों नहीं आए, आप क्या कारण था, एक नया बंधन क्रिएट कर लिया। खेती है, एक गाय पाली है, गाय मेरे बिना दूध नहीं देती है, गाय को कौन संभालेगा, ये कौन सा बंधन नया क्रिएट कर लिया तुमने। बाबा की सेवा में नहीं निकल सकते हो, बाबा के कार्य में सहयोग नहीं दे सकते हो। ये खेती के लिए बाबा ने ये थोड़ी कहा कि ऐसी खेती करने लगो जो आप बंधन बना लो। ठीक है करो, लेकिन कोई भी प्रकार का स्थूल बंधन भी, पशु पक्षियों का भी बंधन बहुत ज्यादा बंधन होता है, उसके बिना वो दूध नहीं देती है, उसके बिना वो चारा नहीं खाती है, वो गाय भी हमारे में फंस गई आकर के। और सोचने की बात है पशु पक्षी भी फंस जाते हैं किसी में। इसलिए इतना स्नेह नहीं बनो, स्नेह दो जो आपके बिना वो चल ही ना सके। ऐसे लौकिक संबंधों में भी कई माताएं हैं, कई ऐसे हैं पुत्रों धोत्रों की पालना करते करते ऐसे फंस जाते हैं जो वो उसके बिना नहीं रह सकते, वो उसके बिना नहीं रह सकते। ये भी इंद्रिय सुख हो गया ना। हम सब इंद्रिय सुख जहां जहां खींच रहे हैं, जो हमें बंधन बना रहे हैं, हमें बहुत महीनता से अपने आप को चेक करना चाहिए। कोई भी बंधन मुझ आत्मा को अपनी तरफ खींचे नहीं। जो बाबा कहता एक सेकेंड का पेपर है, अंतिम पेपर का समय आउट है, पेपर का प्रश्न आउट है, सब कुछ आउट होने के बाद भी पास आठ होते हैं, 108 होते हैं, 16,000 होते चलो, लेकिन कितना बड़ा पेपर है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, एकदम आत्मा नष्टो मोहा हो जाए, कहीं पर भी उसके मोह की रग न बंधी हुई हो, इतना टेंशन देना। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए जितना हम अंतर्मुक्ता की गुफा में रहते हैं, जितना हम एकांतवासी बनते हैं, अपने स्वस्वरूप की स्मृति में रहते हैं। मैं हमेशा चार बातें कहता हूं, एक अपना स्वस्वरूप स्मृति में रखो कि मैं एक ज्योति बिंदु लाइट हूं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। इसका भान पक्का हो जाए, चलते फिरते कर्म करते मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा पक्का किया, फिर मेरा स्वधर्म शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। कोई भी दैहिक धर्म भी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे। अभी तक भी कई बाबा के बच्चों को अपनी लौकिक जाति नहीं भूलती, लौकिक पद नहीं भूलता, उसका भान बना रहता है, ये भी तो एक बंधन है। बाबा ने हम सबको मरजीवा बना दिया, मर गए एक तरफ फिर जी रहे हैं। तो मरजीवा माना सच्चे पक्के ब्राह्मण, ब्राह्मणों को कोई भी शूद्रपन की बातें याद ना आए। शूद्रपन का नाम भी नहीं, शूद्रपन का कुल भी नहीं, शूद्रपन की कोई विशेषता भी न रहे, तब कहेंगे मरजीवा है। और जब तक वो मरजीवा ही नहीं बना है, पक्का सच्चा ब्राह्मण नहीं बना है, तब तक उसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे हो सकता। इसलिए बाबा के साथ सब संबंध हो, बहुत समीपता का संबंध हो, और हम अपने पास्ट लाइफ को भूल करके इस ब्राह्मण लाइफ के जीवन का आनंद लें। बाबा ने हमें सच्चा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण बनाया, ये हमारा पवित्र जन्म है, और ऐसा जन्म पूरे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं होता। देवी देवताओं को भी गर्भ के द्वारा जन्म मिलता है, भले योग बल से होता है, लेकिन संगम युगी आत्माएं हैं जिनको बाबा ने दृष्टि से जन्म दिया, बोल से जन्म दिया, संकल्पों से जन्म दिया। कितना वंडरफुल जन्म है ये। भक्ति में तो देवताओं के बारे में शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी, कोई के नाक से बच्चा दिखा दिया, कोई मुख से दिखा दिया, कोई ने छींका तो बच्चा हो गया, कई चीजें ऐसी ऐसी कहानियां बना दी हैं। बाबा कहता है वो तो मन गढ़ंत कहानियां, दंत कथाएं हैं, लेकिन संगम युग पर बाबा के बच्चों का जन्म कैसे हुआ देखो। कभी सोचा है मेरा जन्म कैसे हुआ? कभी बाबा की प्रदर्शनी समझ लिया, कभी बाबा ने ऐसे बैठे बैठे साक्षात्कार करा दिया, कभी बाबा के साथ ऐसे ही अचानक पहचान लिया बाबा को, बाबा के बच्चे बन गए। हम सब का यह अलौकिक जन्म बड़ा दिव्य जन्म है, पवित्र जन्म है, शुद्ध जन्म है, जिसके अंदर कोई भी देहमान का अंश नहीं है, जन्म में अंश नहीं, बीज में ही अंश नहीं है विकारों का। और जब बीज हमारा बहुत पवित्र है, पवित्रता के बल से, ब्रह्मा बाबा के संकल्पों की शक्ति से हमें ये मरजीवा जन्म मिला, अलौकिक जन्म मिला, तो जो देह मान वाला जन्म है वो भूल जाना चाहिए, उसको बार बार याद नहीं करो। दादी जी एक बात कहती थी, कई ब्राह्मण कहते हैं ये जो बीमारी इसको हुई ना 45 साल 50 साल ज्ञान में चलने के बाद, इसकी जनरेशन का इसका देन है, इसके ब्लड कनेक्शन के कारण ये बीमारी है। शुगर हो ही किसी को, फट से डॉक्टर कहेगा तुम्हारे दादा को, तुम्हारे दादी को, तुम्हारे किसी संबंध को शुगर थी, और उसके आधार से वो कहता है हाँ इसके कारण इसको बीमारी हो गई। तो दादी कहती थी बाबा के बच्चे 50 साल यज्ञ में रहे, यहाँ खाया, यहाँ रहे, यहाँ सेवा की, इतना संग मिला, इतना श्रेष्ठ सब प्रकार की पालना मिली, तो क्या ऐसा ब्लड बाबा के घर में नहीं बना जो पास्ट ब्लड अभी तक असर कर रहा है? पास्ट बीज हमारे शरीर में है और उसके कारण हमें बीमारियां हो रही हैं, क्या अलौकिक जन्म का बीज नहीं है? तो लौकिक बीमारी न हो, अलौकिकता दिखाई देने लगे। बहुत सूक्ष्म समझने की बात है। जब हम बाबा का खा रहे हैं, बाबा की पालना ले रहे हैं, दिन रात वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या ऐसे संस्कार बने हैं? वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो अलौकिकता, वो रूहानियत जो बाबा चाहता है मेरे एक एक बच्चे के चलन से, चेहरे से, बोल से, दृष्टि से, उनकी वृत्तियों से दिखाई दे, अनुभव। हम सब ऐसी अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाए। ये मर्जीवा जन्म है, अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, ब्रह्मा मुक्ति संतान हम सब हैं। तो ये पवित्रता हमारे अंग अंग में हो, और जितनी पवित्रता है उतना सुख है। आप सब समझते हो और सबको सुनाते हो, सुख और शांति की जननी पवित्रता है। अगर पवित्रता का कहीं भी खंडन हो रहा है, किसी भी तरह से हो रहा है, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए आत्मा को अपने बहुत पवित्र स्वरूप में रह, और वो सुख जिसने अनुभव किया है उसको ये क्षणिक सुख, इंद्रिय सुख, वस्तुओं के द्वारा सुख, किसी ने महिमा कर दी, मान शान नाम गुण, किसी ने विशेषता हमारी वर्णन कर दी, वो सुख जो है अल्पकाल का जो प्राप्त होता है, उसकी इच्छाएं नहीं रहती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरी महिमा करे, ग्लानि करे। मैंने अपनी अगर अच्छी स्थिति बना ली है तो कन रस कभी भी मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। कोई की महिमा के बोल कान में चले गए, कोई ने ग्लानि कर दिया, कोई ने करेक्शन कर दी और मैंने उसको सुन लिया और मेरी मूड खराब हो गई। एक ने महिमा की प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्नचित हो गए, और दूसरे ने कुछ कट कर दिया, कटाक्ष कर दिया और खुशी गायब हो गई। चेक करना, बहुत महीन चेकिंग है ये। कई बार ऐसे होता है कोई ने सुनाया, उसने डायरेक्ट हमें कुछ नहीं कहा, आपके बारे में फलाना ऐसे कह रहा था, आपके बारे में चर्चा चल रही थी, सामने भी नहीं है, अच्छा सुन लिया, और बाद में उसकी खुशी गायब, उसका उमंग उत्साह खत्म, उत्साह खत्म हो जाता। क्या ये बंधन नहीं है? किसी की बातों का प्रभाव पड़ जाए, कानों में बात चली गई। बाबा बड़ी रमणीकता से एक बात कहते हैं, इतना बड़ा हाथी कितनी चींटियों को अपने पैर के नीचे दबा करके खत्म कर सकता है, हजारों चींटियों पर पांव रख दे खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक छोटी सी चींटी अगर कान में चली गई तो हाथी को बेहोश कर देती। क्यों ऐसा क्यों? बाबा कहता वो हाथी छोड़ो, लेकिन हमारे महारथी जो हाथी हैं, इनके एक बुद्धि में कोई ने कान में कोई ऐसी बात डाल दी छोटी सी, आपके लिए फलाना ऐसा कहता था, अब उसकी अतीन्द्रिय सुख क्या खुशी गायब हो गई, उमंग उत्साह खत्म हो गया, योग टूट गया। कई लोग कहते हैं क्या करें, बहुत दिन हो गए, खुशी नहीं रहती, उदासी रहती, निराशा रहती। ये बहुत बड़ी बीमारी है, ध्यान देना। अगर ब्राह्मण जीवन में कोई आत्माएं निराश उदास हताश रहती हैं, तो जैसे लौकिक जीवन में आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, ऐसे अलौकिक जीवन में ब्राह्मणों का उमंग उत्साह का ब्लड रुक जाए, खुशी गायब हो जाए, ये बहुत बड़ी दिल शिकस्त की बीमारी है। कभी भी ये ब्लड रुकना नहीं चाहिए, सदा उमंग उत्साह के पंख लगे रहें, कुछ नया करते रहो। जहां पर लगे कि अभी उदासी आ रही है, सुस्ती आ रही है, निराशा के संकल्प आ रहे हैं, वहां अपने मन और बुद्धि को अच्छे अच्छे चिंतन में बिजी करो, चेंज करो अपने विचारों को। कई मेरे पास ऐसे फोन आते हैं, बड़ी बड़ी बहनें, बहुत पुरानी पुरानी, मेरे खुशी नहीं रहती, मेरे उदासी उदासी लगती है, मेरे ऐसा होता है। अरे भाई, ये कहां से बीमारी आ गई? तो दिल की बीमारी, हार्ट की बीमारी हो गई, चेक करो क्यों हो रही है। और अगर हो रही है उमंग उत्साह कोई कारण से, यही कारण है, उसने मेरी एरिया में सेंटर खोल दिया, उसने ये कर दिया, मेरे को सेवा का चांस नहीं मिलता है, मेरे कोई पूछता नहीं है, मेरे कोई जानता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बस गई खुशी, गायब, ब्लॉक हो गया, उमंग उत्साह का ब्लड रुक गया। अब जब उमंग उत्साह का ब्लड रुक गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो जरूर अटैक आएगा ही, क्या होगा। इसलिए हरेक बाबा के बच्चे को बहुत अटेंशन देना है। ये ब्राह्मण जीवन उड़ती कला का जीवन है, और उड़ने के लिए चाहिए उमंग उत्साह का पंख। जहां हिम्मत है उमंग उत्साह है, जहां नशा और खुशी है वो डबल रिफाइंड पेट्रोल है, महात्मा बैठती है, उड़ जाती है, संसार की बातें सब नीचे रह जाएं। ये संसार असार है, कोई बातों का प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर न पड़े। जब इस प्रभाव मुक्त आत्मा बन जाएगी, कुछ भी हो रहा हो, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे उस स्थिति को निभाया, सबको निर्दोष दृष्टि से देखा, सबको निर्दोष, सब मेरे बच्चे निर्दोष हैं। कोई ने गाली दी, कोई ने निंदा की, बाबा कह रहा निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। ये बच्चे ये गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं। एक दिन गाली देने वाले गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। बाबा ने कितना उसको पॉजिटिव रूप दे दिया, कभी भी उनकी बात उनको ये नहीं कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बच्चे, इनके लिए कुछ करो, सोचो, नहीं बच्चे ये निर्दोष है, इनको पता ही नहीं किसका काम है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति को निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख मान हानि सब में समान बना ली, तब वो संपन्न बने, तब वो अतीन्द्र सुख का अनुभव कर पाए। अगर निंदा स्तुति में समान नहीं है, कोई भी बात हो गई, कोई ने मेरे को कट कर दिया, कोई ने करेक्शन कर दिया, कोई बात चलते चलते बोल दी, और हमारी खुशी गायब, हमारा उमंग उत्साह खत्म। हम सब इन बातों को आधार न बनने दें, कुछ भी हो जाए, ऐसे बन जाओ जैसे इसके ऊपर कोई, तीन प्रकार के लकीर बनते हैं, एक पानी पर लकीर, एक कागज पर लकीर, एक पत्थर पर लकीर। कोई बात आ गई, आपने वो लकीर कहाँ लगा ली? ऐसे तो नहीं ऐसे दिल पर पत्थर की तरह लगा दी जो मिटे ही नहीं, कितना भी मिटाने की कोशिश करो मिटेगी नहीं। कागज वाली चलो उसके लिए भी रबड़ से मिटाई जा सकती है, लेकिन उसमें भी दाग रह जाता है। पानी पर है, ऐसे लगी आई और गई। तो कोई भी बातें आए उसको ऐसे अनुभव करो तो जैसे पानी में आई, लहर की तरह आई और चली गई, वो प्रभाव अंदर न पड़ जाए, वो स्थिति को डगमग न कर दे, हमारी खुशी को छीन न ले। उसके लिए बाबा मुझे मिला है, जिसने मेरी विशेषताओं को जाना है, जिसने मुझे चुना है, जिसके लिए हम न्योछावर हुए हैं। बाबा कहता बच्चे केवल सी फादर फॉलो फादर, बाबा को देखो बस। साइड सीन में अगर गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहां ऐसा हुआ वहां ऐसा हुआ, टीचर ऐसे करते, फलाना कैसे करता, बाबा कहता तुमने क्यों देखा? बाबा उनको दोष नहीं देगा, दोषी तुम हो। इसलिए हम अपनी स्थिति को बनाने के लिए कुछ भी हो ध्यान दें, कैसी भी बातें आ जाएं, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव न पड़े। और वो तभी हो सकता है जब आपने ज्ञान और योग को अपना आधार बनाया है। केवल आधार ये न हो कोई मुझे पूछे, कोई मेरी महिमा करे, कोई मुझे टोली खिलाए, कोई पानी दे, कोई सौगात दे, कोई मान महिमा दे, कोई पोजीशन पद दे, अगर ये आधार हैं तो वो आधार कभी भी खिसक सकते हैं। और जिसने ज्ञान और योग को आधार बनाया है उसका आधार बहुत मजबूत होता है। हम हमेशा कहते हैं चार बातों को आधार बनाओ। एक का निश्चय स्वयं में, बाबा में, ड्रामा में, परिवार में, निश्चय का फाउंडेशन अगर पक्का है तो निश्चय के फाउंडेशन में विजय निश्चित ही है। दूसरा फाउंडेशन है पवित्रता का, जिसने पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत किया है, कुछ भी हो जाए उसको कोई हिला नहीं सकता। तीसरा फाउंडेशन है निश्चय का, निश्चय के साथ साथ अनुभव का। निश्चय, पवित्रता और अनुभव एक बहुत बड़ी अनुभव अथॉरिटी है। जो कुछ हम कहें उसका अनुभव जरूर करें। और चौथा है सत्यता, हम सत्यता की राह पर हैं। अगर हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हैं, सत्यता को हमने अपनाया है, सत्य स्वरूप में हम रहते हैं, तो कोई भी हिला नहीं सकता। जहां सत्यता है, पवित्रता है, अनुभव है और निश्चय है, वह आत्मा का फाउंडेशन बहुत गहरा है, पक्का है। ज्ञान और योग का फाउंडेशन है उसका, इसलिए कोई भी बातें उसको हिलाती नहीं है। और जब चाहता है एकदम एकांत में बैठ जाओ, भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। जितना आत्मिक स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, उतना अंदर अंदर आत्मा प्रफुल्लित रहती है, खुशी का अनुभव करती है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होने लगता है। और जहां अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, वहां आत्मा सब आकर्षण से मुक्त हो जाती है। तो वर्तमान समय हम सब बाबा के बच्चे संगम युग के सुख का अनुभव करें। कोई भी बातें होती है होने दो, आपको कोई बातों की परवाह नहीं करनी। मुझे बाबा मिला, सत्य ज्ञान मिला, ऐसा अच्छा परिवार मिला, इतना ऊंची पढ़ाई और पालना मिल रही है, श्रेष्ठ मत मिल रही है। हम सब इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। उस नशे और निश्चय में रहो और अपने आप को बहुत आनंदित स्थिति में रखो, तब हर पल अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकेगा। ठीक है, अभी हम 5 मिनट के लिए शरीर से अलग होकर के अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, क्योंकि आपके क्लास के ऊपर क्लास है, मुझे पता है अभी सचिन भाई आने वाले हैं क्लास के लिए। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए सब शरीर स्थिति में बैठ करके भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपनी अंतर्मुक्ता की गुफा में अपने लाइट माइट स्वरूप को देखो और बाबा की शक्तियों का, उनकी किरणों का अनुभव करो। अति इंद्रिय सुख क्या होता है, 5 मिनट में भी उसका गहरा अनुभव कर सकते।